ओम शांति।
तो आज हम फिर से ग्रुप डिस्कशन करेंगे एक नए विषय पर। कल किस विषय पर किया था? लीकेजेस इन ब्राह्मण लाइफ। आप लोगों ने रूम पर जाकर कुछ लिखा था, इस पे लिखा था कुछ? बस हमारी कमजोरी यही है ना कि हम जितना मिलता है उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के मामले में ये संतुष्टता अच्छी बात नहीं है। बाकी साधन सुविधाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए या अन्य स्थूल प्राप्तियों के मामले में तो ये ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ के मामले में हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं बस एक बार कर लिया हो गया, एक बार सुन लिया हो गया, नहीं, एक दो जीवन की धारणाएं अपना ली हो गई, नहीं, निरंतर सीखने की इच्छा। जीवन में एक लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। हम बाबा के घर में क्यों आए हैं? बस एक बार मुरली सुन लेने, थोड़ा सा योग कर लेने, जीवन ठीक ठाक चलता रहे, यही लक्ष्य है या और भी कुछ है? कुछ पाना है, कहीं जाना है, कुछ तो बनना है। क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? वो लक्ष्य याद रहेगा तो वो लक्ष्य अपने आप हमसे पुरुषार्थ कराता रहेगा। तो हमें संतुष्ट नहीं होना है, करते रहना है। लिखना बहुत अच्छी कला है। जिस तरह से हम आपस में बैठकर चर्चा करते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, वैसे ही जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारा मन तीन गुना अधिक एकाग्र होता है। तीन गुना अधिक हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो हमारे अंदर जो कुछ भी है वो सब बाहर आने लगता है। तो इसलिए ये लिखने की आदत जरूर हो। हम जरूर थोड़ा रोज लिखे, रोज नहीं भी लिख सकते हैं तो हफ्ते में एक दो बार जरूर किसी शांत एकांत स्थान में बैठकर लिखें, ज्ञान की बातों पर मनन करें। तो आज एक नए विषय पर हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। हम सब जानते हैं कि जब व्यक्ति किसी अच्छे मार्ग के लिए आगे बढ़ता है, अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ता है, जीवन में जब कुछ अच्छा करने की सोचता है तो उसके जीवन में विघ्न बाधाएं भी उतनी ही आती हैं। और इंसान जितना ही तेज गति से आगे बढ़ता है, विघ्न बाधाओं का फोर्स भी बढ़ जाता है। जहां तक विघ्नों की बात है, बाबा कहते हैं कि ये विघ्न हमें मजबूत बनाते हैं। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, कहीं न कहीं हमें कुछ सिखा करके जाती हैं, हमें अनुभवी बना करके जाती हैं। ये है विघ्नों का एक पक्ष। लेकिन विघ्नों का एक दूसरा पक्ष भी है कि अगर जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, अगर विघ्न बाधाएं बहुत हमारे जीवन में आने लग जाएं, तो वही विघ्न बाधाएं फिर आत्मा को दुर्बल भी बनाने लगती हैं। हमारा समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, सब कुछ उन विघ्नों को सॉल्व करने में, उनका सामना करने में ही बीतता जाता है, नष्ट होता रहता है। तो विघ्न बाधाएं अच्छी भी हैं, लेकिन जब ज्यादा हो जाएं तो वो बुरी हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थी जीवन में विघ्न बाधाएं आती हैं, आनी भी चाहिए और आती रहेंगी, लेकिन हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि दिनों दिन हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं कम होती जाएं। सबके जीवन में बाधाएं हैं क्योंकि हम सबने कर्म किए हैं, हमारा कर्मों का बंधन है, हिसाब किताब है, तो बाधाएं तो आएंगी, लेकिन ये बाधाएं हमें साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि जीवन की बाधाएं दिनों दिन कम होती जाएं। अब उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पुरुषार्थी जीवन में बाधाएं कौन कौन सी हैं। कई बार हम बाधाओं को पहचान नहीं पाते हैं। बाधाएं कई बार मोटी ही नहीं होती हैं, स्थूल ही नहीं होती हैं, लेकिन कई बार सूक्ष्म लेवल की भी बाधाएं होती हैं जो हमारी साधना के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। तो ये जो सटल लेवल के जो ये प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है, ये ज्यादा हार्मफुल है। तो एक योगी को जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं का ज्ञान होना चाहिए। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण जीवन में निर्विघ्न रहने के लिए हमारे जीवन में कौन कौन सी धारणाओं का होना जरूरी है। हम थोड़ा सा सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे। मैं मोटे विघ्न बाधाओं की बात नहीं कर रहा हूं, वो सब तो आपको पता होंगी क्योंकि रोज आप फेस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी जो सूक्ष्म लेवल की बाधाएं हैं उन बाधाओं पर। तो ब्राह्मण जीवन में यदि हमें निर्विघ्न रहना है तो कौन कौन सी धारणाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए जो विघ्न के रूप में प्रतीत होती हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है टॉपिक? टॉपिक क्लियर है? कुछ पूछना है इसके विषय में? हाँ, उदाहरण के लिए जैसे कौन कौन सी बातें, धारणाएं होनी चाहिए जो हम निर्विघ्न रह सके। सबसे पहला कामनाएं, कामनाएं, भिन्न भिन्न चीजों की कामना होना मन में, इच्छाएं, ये इच्छाएं भी योगी के लिए बाधा है। मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे घर में टाइल्स लगे हो, मेरे पास एक महंगी गाड़ी हो, मेरा बच्चा एक बड़े स्कूल में पढ़े, ये सब क्या है? अब्दुल कलाम जी बड़े स्कूल में ही पढ़ करके बड़े हुए थे क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े स्थानों पे नहीं पहुंचते? पहुंच जाते हैं ना। अच्छा, आपके घर में मार्बल लगा हो, ग्रेनाइट लगा हो, तभी नींद आएगी? नींद तो झोपड़ी में भी आ सकती है ना। घर हमें किस लिए चाहिए? रहने के लिए ना, गुजारा करने के लिए। महल की तो जरूरत नहीं है, सोने के महल तो सतयुग में मिलेंगे। यहाँ कामना किस लिए? तो ये तरह तरह की कामनाएं, कौन कौन सी कामनाएं हैं उसकी भी एक लिस्ट बनाएंगे। अपेक्षाएं, दूसरों से हमारी अपेक्षाएं, खास करके जब हम लौकिक में होते हैं तो अपने घर वालों से, पति का पत्नी से कई अपेक्षाएं होती हैं, पत्नी की अपने पति से, माता पिता को अपने बच्चों से, बच्चों को अपने माता पिता से, तरह तरह की अपेक्षाएं होती है ना। और कलयुग में हमारी अपेक्षाएं पूरी हो जाएं, इसकी गारंटी है? बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नहीं होती है। हमारी 90-80% अपेक्षाएं जो दूसरों से हम रखते हैं वो पूरी नहीं होती हैं। और जब नहीं होती है तो मन में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते हैं और वो हमें योगी नहीं बनने देते, हमारे मन को स्थिर नहीं होने देते। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें धारण करने की जरूरत है, जिन्हें धारणा रूप में अपनाने की जरूरत है, जिससे हम योगी बन सके, हमारे ये जो साधना का मार्ग है वो निर्विघ्न बन सके। तो इस पे चर्चा करेंगे। अभी कुछ क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ विषय? ऐसी बातों की आप लिस्ट बनाएंगे और कैसे हम इन पर विजय प्राप्त करें, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। अभी आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। जो टीम लीडर्स हैं आगे बैठे। टॉपिक कुछ क्लियर हुआ? टॉपिक कुछ क्लियर हुआ? अभी तो समय कम मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर फिर आगे की दिनचर्या है, पर आप लोग जब अपने सेंटर्स पे जाएं तो संडे के दिन खास ये प्रोग्राम बनाएं और ज्यादा समय दें, और समय दे करके ऐसे ही अलग अलग विषय लें, वो प्रैक्टिकल विषय जो हम ब्राह्मणों के जीवन में बहुत उपयोगी हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स आप लें और उन पर चर्चा करें। तो अभी सुनते हैं आज आप लोगों ने क्या मंथन किया है। आए, कौन सुनाएगा? आइए, आप सिर्फ हमारे पास 15 मिनट समय है, तो सार में 2 से 3 मिनट में आप सिर्फ कौन कौन सी बाधाएं हैं जिन पर हमें विजय पानी है, कैसे पानी है वो छोड़ दीजिए, सिर्फ बाधाओं पे चर्चा करिए।
ओम शांति। हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं,
थोड़ी सी माइक को नजदीक ले,
कामनाएं, इच्छाएं और अपेक्षाएं भाई जी आपने बता दिया था। पिछले जन्मों का जो बोझ है कर्मों का, वो भी हमें जीवन में विघ्न में लाता है, श्रीमत का उल्लंघन कर देते हैं। कई बार हम लोक लाज के डर से कि किसी ने कहा प्याज खा लो, शादी में आयो, कोई बात नहीं, वो बुरा मान जाएगा, इस डर से भी हमारा जीवन विघ्नफुल हो जाता है। पास्ट और फ्यूचर की चिंता, ये भी, क्योंकि जब हम ये चिंतन करेंगे तो बाबा को नहीं याद कर पाएंगे और हमारा जीवन कैसा होगा, निर्विघ्न बनेगा। अत्यधिक चिंतन, चाहे वो पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है, दोनों ही नुकसानदायक हैं। देहधारी और लौकिक संबंधियों को प्राथमिकता जब हम देते हैं तो बाबा के साथ हम सर्व संबंधों का अनुभव, उनके साथ का अनुभव नहीं कर पाते, उनको ही संतुष्ट करने में लगे रहते हैं और जीवन में फिर विघ्न खत्म ही नहीं होते, क्योंकि संतुष्ट करने का साधन हमने बीज से कनेक्शन तोड़ के किसको संतुष्ट करना शुरू कर दिया, टाल टहनियों को, पत्तों को। और दृढ़ता की कमी है तब भी हमारा जीवन विघ्नफुल है। और अपने को देह बहन के अंदर आकर परखना, अपने को कई बार हम ओवर एस्टिमेट भी कर लेते हैं और अंडर वैल्यूएट भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम आत्मिक समृद्धि में हैं तो मुझे देह के गुणों के हिसाब से ही मैं अपनी विशेषताओं को देखूंगा, परंतु देह बहन में आकर मैं अपने आप को ओवर या अंडर वैल्यूएट कर लेता हूं। और लोक लाज के डर से मर्यादाएं छोड़ना, चाहे वो फिर अमृत वेला छूटे, नुमा शाम छूटे, संबंधियों के साथ घूमने निकल जाते हैं तब भी हम अपनी मर्यादाओं को छोड़ देते हैं, नुमा शाम छूट जाता है, रात को लेट सोएंगे, अमृत वेला छूट जाएगा। तो ये विघ्न है जो कि हमें हमारे जीवन में हम फेस भी कर रहे हैं, और अगर हम कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे तो इन पर हम ओवरकम नहीं पा सकते। ओम शांति।
बहुत अच्छा चिंतन किया आपके ग्रुप ने, पर एक चीज, थोड़ा सा, जस्ट एक छोटा सा करेक्शन, ताकि मैं कल भी मैंने ये बात कहा था, परसों भी मैंने ये बात कही थी कि जब भी हम चिंतन करते हैं तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर के, पर्टिकुलर होकर के हम चिंतन करें। जैसे बहन जी ने कहा कि बीती बातों का चिंतन, कुछ ऐसा ही था ना, पास्ट की बातों का चिंतन। एक होता है कि विघ्न, वो बातें जो यदि हमारे जीवन में है या नहीं है तो बार बार समस्या क्रिएट करेगी, और एक वो बातें जो अगर हमने किया तो हमारी शक्ति ड्रेन आउट हो गई, कल जिस पे चर्चा हुई थी, लीकेज। जैसे आपने एक दो बातें कुछ ऐसी कही जो लीकेज की कैटेगरी की है, वो विघन वाली कैटेगरी की नहीं है। जैसे वो आपने किया, अब एक दो बात और मैं भूल गया आपने जो कही थी, तो उसमें से जैसे हम वो करते हैं ना, तो आत्मा की शक्ति तुरंत नष्ट हो जाती है और आत्मा अपने आप को दुर्बल महसूस करती है। हमें चिंतन क्या करना है, वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में विघ्न क्रिएट कर रही हैं, हमारी शक्तियों को नष्ट कर रही है। नहीं, बाकी ओवरऑल आपका चिंतन अच्छा था। नेक्स्ट आइए।
अभी मैंने तो हमने ये अगर हमें निर्विघ्न रहना है तो हमारी कौन सी धारणाएं होनी चाहिए इस पे किया है, तो जो इन्होंने बताया कि सब पॉइंट्स वो थे, उसके अलावा मैं एक चीज,
माइक को,
हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि दुआएं जो है हमें लेनी है, तो दुआएं जितना ही हम लेंगे वो हमारे विघ्न उससे समाप्त होते हैं। तो दुआएं कैसे लेंगे ये हमें भगवान सिखाते हैं। तो मेरा जो इसमें था कि अगर हमें निर्विघ्न रहना है तो धारणाओं में तो सबसे ऊपर तो श्रीमत है, परमात्मा की श्रीमत पे अगर हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, अमृत वेला वो जितनी भी श्रीमत है सभी को पता है, तो जैसे जैसे हम श्रीमत पे चलते हैं परमात्मा से हमारा योग अच्छा होने लगता है, और जब योग होता है तो वो जो करंट फ्लो होता है उससे हमारी आत्मा में बल भरता है, और जो हम उस बल भरने से क्या होता है कि जो हमारे विघ्न है वो अपने आप खत्म होने लगते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जो लोग बाधाएं डालते थे, जब हम निश्चय बुद्धि हैं, हमें पता है कि परमात्मा हमें शक्ति दे रहा है और हमारे आत्मा में बल भर रहा है, बिल्कुल निश्चय है, तो वो जो विघ्न डालने वाले भी वो ठंडे पड़ जाते और कोई विघ्न आने आते ही नहीं है। और जब भगवान की सब शक्तियां आ गई, उनके गुण हमारे अंदर आ गए, तो हम संतुष्ट हो गए। जब संतुष्ट हो गए तो विघ्न आएंगे क्यों, हमें जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, बाहर वालों की, बाहरी दुनिया के आकर्षण की वजह से ये चाहिए चाहिए जब हम करते हैं तो वो चीज नहीं मिलती है, तो फिर हम विघ्न भी कई बार वो विघ्न स्वरूप भी बन जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमें विघ्न डालते हैं कि ये क्यों, ये कई बार क्या होता है, हम जब ज्ञान में नहीं थे, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, जब हम ज्ञान में नहीं थे,
ज्यादा एलाबोरेट मत करिए, पॉइंट वाइज बताएं, दूसरों को भी बोलना है ना।
हाँ, तो क्या है कि जो लोग जिन्होंने हमें पहले देखा हुआ है उनको ये नहीं अच्छा लगता कि जैसे हम इस ज्ञान में, लेकिन जब हम मेरा ये मतलब ये है कि निश्चय बुद्धि जब हमें परमात्मा पे जो निश्चय है वो हमारे सारे विघ्न दूर कर सकता है, सबसे बड़ी चीज।
ठीक है, ओके। और कौन सुनाएगा? और बहनों का तीन ग्रुप था ना, दो ही ग्रुप था, दो ग्रुप।
ओम शांति। तो विघ्न आने के कारण पर जो चर्चा हुई, तो उसमें पहला पॉइंट आया कि धीरज की कमी। कई बार हम हड़बड़ी में आकर विघ्नों को क्रिएट कर देते हैं, तो थोड़ा धीरज न रखने के कारण। अगला है कि विघ्न कई बार बहुत छोटे होते हैं, पर सोच सोच के हम बहुत बड़े कर लेते हैं उनको, और बाद में पता चलता रहे तो छोटी सी बात थी। तो विघ्न को बहुत बड़ा नहीं समझना, पेपर टाइगर समझना है। तीसरा, संस्कारों के कारण। हमारे संस्कार विघ्न का निर्माण करते हैं, तो जितना हम इजी रहेंगे उतने कम विघ्न आएंगे। अगला, मैंपन के कारण भी। कई बार हम अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं और दूसरों को नाराज करते हैं, उस वजह से भी विघ्न आते हैं। तो संगठन में मैंपन के कारण विघ्न उत्पन्न होते हैं, और श्रीमत के अनुसार जब काम नहीं करते हैं तो फिर विघ्न आते हैं। और साक्षी भाव का अभ्यास न करने से, कई बार उस समय हम साक्षी भाव का अगर अभ्यास करेंगे, लेट गो करेंगे, तो थोड़ी देर के बाद कई विघ्न ऐसे होते हैं जो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और किसी बात को एक्सेप्ट न करने से, कभी कभी हमारा ये होता है कि कोई भी बात होती तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते दूसरों को, इस वजह से भी विघ्न आते हैं। अगला है कि बिना अवेयर होकर हम कोई काम करते हैं, जागृति नहीं है। जैसे हम चेक करें कि सुबह से हम क्या सोच रहे थे, एक घंटे पहले क्या सोच रहे थे, तो पता चलेगा कि पता ही नहीं, याद ही नहीं क्या सोच रहे थे, क्योंकि इतना यूजफुल नहीं था, मीनिंगलेस था। मतलब हम अवेयर नहीं होते हैं तब भी जाने अनजाने में विघ्न आते रहते हैं। और लाइफ में अपने जब कोई नियम नहीं होते, हमारे जीवन के कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, किसी ने कैसे चलाया वैसे चल दे, किसी ने कहा ऐसे करो तो ऐसे करने लग गए, उस कारण भी विघ्न आते हैं। ओम शांति।
बहुत बढ़िया, इस ग्रुप ने बहुत क्रिस्प वे में चिंतन किया है, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपके हैं। इस तरह की बातें, वैसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और एक बहुत अच्छा तरीका पुरुषार्थ का ये होता है कि इन बातों का आप संग्रह करें, एक लिस्ट बनाएं और एक एक पॉइंट को लें। जो कमी, जरूरी नहीं है कि सारी कमियां सब में हों, पर हमारे अंदर जो कमी है उसको एक एक को फिगर आउट करें और फिर उसके लिए एक प्लान बनाएं, एक हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, और उस पर वर्कआउट करें। कहते हैं तो कई बार ना ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हर चीज को बहुत सीरियसली लेना, किसी ने मजाक में कुछ कह दिया, कुछ गुम हो गया, कोई बीमारी आ गई। इजी, अगर हम मन से इजी हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं इजी हो जाती हैं। रिएक्ट करना, कईयों में ओवर रिएक्ट करने की आदत होती है, तो तुरंत रिएक्ट करना ये अपने आप में एक योगी के लिए तो कम से कम बहुत डेंजरस है। किसी भी बात पर बाबा क्या कहते हैं, पहले सुनो, समझो, सोचो और फिर बोलो, एकदम से नहीं। और कई बार ना छोटी छोटी कथा कहानियों के माध्यम से इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हम सबको मिलती है। एक बहुत सुंदर, इसी संदर्भ में मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि एक राजा था, उसकी एक पुत्री थी, बेटा कोई था नहीं। एक उनकी कन्या थी और उस राजकुमारी को शिकार खेलने का बहुत शौक था, लेकिन पहले के जमाने में लड़कियों के लिए तो बहुत सारी पाबंदियां थी, उन्हें शिकार पे भी नहीं जाया जाने दिया जाता था। तो वो राजकुमारी क्या करती थी, वो अपनी माँ से बात करके माँ को कैसे भी अपने फेवर में ले लिया और माँ को कन्विंस करके वो राजकुमार का ड्रेस पहन लेती थी और राजकुमार का ड्रेस पहन करके वो शिकार खेलने जाती थी, क्योंकि उसको बहुत शौक था शिकार खेलने का। अब लोग ये सोचते थे कि ये भाई कोई राजकुमार होगा कहीं का, किसी रियासत का, तो कोई पहचान नहीं पाता था। अब राजा की क्या आदत थी कि राजा बहुत ही तुनक मिजाज था, उसका एक ओवर रिएक्टिंग नेचर था, कोई भी बात सुना और तुरंत रिएक्ट करता था, बिना सोचे समझे किसी को फांसी दे देना, किसी का गला कलम कर देना आदि आदि। तो उसी दौरान एक सन्यासी उनके महल में आया और उन्होंने कहा राजा से कि आप एक कोई व्रत लो। क्या व्रत ली? तो उन्होंने बोला कि भाई मैं क्या व्रत लूं? तो बोला जो कमी आपको बहुत परेशान कर रही हो उसको आप उसका व्रत लो। तो बोला मेरे में ये ओवर रिएक्ट करने की आदत है। तो सन्यासी ने कहा कि जब भी अगर आपको गुस्सा आए तो आप थोड़े दिनों के लिए संकल्प लो कि मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगा, अभी कोई भी चीज मैंने देखा। कई बार ऐसा भी होता है ना कि सामने देखी हुई चीज भी गलत होती है ना, वो नहीं होती है जो वास्तविकता है, दिख रहा है पर वो सही नहीं है। तो तुरंत देख करके रिएक्ट नहीं करना है, तुरंत सुन करके रिएक्ट नहीं करना है, पहले सुनो समझो दिमाग को ठंडा करो, फिर क्या करना है बाद में निर्णय करो। तो वो राजकुमारी राजकुमार के वस्त्र में जाती है और शिकार खेल करके देर रात से पहुंचती है तो थक जाती है, वो बिना वस्त्र चेंज किए वो मेल कॉस्ट्यूम में ही वो अपनी माँ के साथ सो जाती है। अब वो अचानक सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में वो राजा जैसे रानी के कक्ष में जाता है तो एक मेल ड्रेस में वो देखता है कि कोई मेरी रानी के साथ सोया हुआ है। उसको एकदम से गुस्सा आता है और वो तुरंत तलवार निकालता है मारने के लिए और उसी समय उसको वो सन्यासी की बात याद आती है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, सुनो देखो समझो सोचो, मन जब शांत हो जाए तब निर्णय लो, क्योंकि शांत मन से जब निर्णय लेते हैं तो वो अक्सर सही होता है। फिर उसको बात जब समझ में आती है वो तुरंत तलवार को म्यान में रखता है और सोचता है कि मेरी रानी तो बहुत ही धर्मपरायण है, अच्छी स्त्री है, ऐसा वो कर नहीं सकती, पर पुरुष के साथ वो कैसे सो सकती है। अभी वो सोच ही रहा होता है, उसका मन थोड़ा सा शांत और शीतल हो रहा होता है, तब तक नींद में वो राजकुमारी पलटती है। वो देखता है ये तो राजकुमारी है, ये मेल ड्रेस में सो रही है, बाकी की बात तो उसको बाद में पता पड़ती है क्यों ऐसा स्ट्रेस में। तो कहने का मतलब ये है कि ओवर रिएक्ट जब हम करते हैं, तुरंत हम जब रिएक्ट करते हैं तो कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और ये हमारे जीवन में बहुत आगे और फर्दर बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने भाई ने सुनाई। तो हम सब ऐसी एक एक टॉपिक को लें और उस पर 10 दिन 15 दिन एक हफ्ते का प्लान बनाएं और वर्कआउट करें तो सचमुच हमारे ये जो योगी जीवन है वो बहुत ही सरल होने लगता है, इसका सुख हमें मिलने लगता है। नेक्स्ट कौन है?
गुड आफ्टरनून सभी भाई बहनों को, ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक था कि धारणा टू बिकम अ योगी, योगी कैसे बन सकते हैं और उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं हमें। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो खुद ही हमारा मन है, क्योंकि हमारे अंदर विकार हैं जैसे कि डिजायर्स, उसका हमारे को एंटोनिम है जैसे सेटिस्फैक्शन, देन हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं, देन अलबेलापन है, डाउट्स हैं, सेंसुअल डिजायर्स हैं, एंगर है, ईगो है, ग्रीड है, अटैचमेंट्स हैं, जेलसी है, ओल्ड बैड हैबिट्स हैं, पुराने हमारे संस्कार हैं, जितने भी एक्सेस ऑफ थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहते, वो सब एक प्रॉब्लम ही है मेरे हिसाब से। देन जो सॉल्यूशन मुझे लगता है कि ये जो हम करते हैं मुरली पढ़ते हैं, ज्ञान के कमी के कारण हमें ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो हम जो है मुरली पढ़ते हैं देन योग करते हैं, इन सब चीजों से हमें बहुत हेल्प मिलती है इसको सॉल्व करने में। और जहां पे मुझे लगता है प्रैक्टिकल नोट पे अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि होम के लेवल पे अगर हम लेते हैं, जैसे कि वुमेन्स हो गई, जैसे उनके हस्बैंड्स कई बार सपोर्ट नहीं करते हैं, प्योरिटी को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। और सेकेंडरी अगर ऑफिशियल लेवल पे हम देखा जाए तो फिर कई बार हमें पीयर प्रेशर में या अपने बॉस के प्रेशर में कुछ करप्शन हमको करनी पड़ती हैं, वो बेसिकली हमारा प्रेशर हो गया। और जैसे थोड़ा सोशल एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है, जैसे कि सपोज मान लीजिए मैं यहीं ज्ञान सरोवर में ही पैदा हुआ होता तो मेरा संस्कार जो है वैसा ही होता, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट वैसा होता शुरू से ही। अब मैं जहां पला बड़ा हूं, जैसी मेरी लाइफस्टाइल रही है, मैं वैसा ही हूं, ये है। और एक सेकेंड, बाकी मुझे ये लगता है जो ठीक हो सकता है ये मेडिटेशन से परसिस्टेंटली हम नॉलेज गेन करते रहें, सेल्फ रियलाइजेशन करें सबसे पहले हम, और रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये सारी हैं ही, और हम अपनी कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा हम प्रेजेंट में रह सकें, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकें, क्योंकि जब हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे तभी हम अपने विकारों को देख पाएंगे और अपने सोच को बदल पाएंगे। थैंक यू, ओम शांति।
बढ़िया, बहुत अच्छा, अपने ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया। ज्ञान योग से तो सब ठीक होता ही है, और बाकी कमियां तो ओवरऑल सब में सब ही हैं, परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। इस चिंतन को आप लोग और आगे बढ़ाएंगे अपनी लेजर टाइम में, और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो करके। क्या स्पेसिफिक? मेरे व्यक्तिगत पुरुषार्थी जीवन में कौन कौन सी विघ्न बाधाएं हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं? ठीक है, ये समाज है, हमारा जो प्रोफेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब अलग है, वैसे तो सिचुएशंस बहुत सारी है, पर व्यक्तिगत मेरे पुरुषार्थी जीवन में कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उस पर चिंतन करेंगे तो आपको बहुत कुछ अपने अंदर की कमियों के बारे में ज्ञान होगा। और एक योगी को अपनी कमियों को जानना ही चाहिए, एक बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी बुराइयों का भी ज्ञान होना चाहिए और अपनी अच्छाइयों का भी ज्ञान होना चाहिए। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे, और जानने का सबसे सुंदर तरीका यही है, योग और चिंतन। तो इसको आगे आप कंटिन्यू रखेंगे। आज आपकी भट्टी का अंतिम दिन है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये भट्टी की, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बस हम लोग तो यहाँ इसीलिए है ही कि आप आए और आपकी हम सब सेवा करें। हमारे जीवन का तो लक्ष्य यही है कि ये पूरा संसार एक दिन बेहद का सुखमय संसार बन जाए, और हम लोग यहाँ रह करके वो कार्य कर रहे हैं बाबा का, आप सब ग्राउंड लेवल पे रह करके कार्य कर रहे हैं, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो आगे जा करके इस भट्टी को आप यहीं समाप्त नहीं करना, मेरे कहने का मतलब ज्ञान सरोवर की जो भट्टी है वो आज आपकी पूरी हो रही है, पर आपके जो जीवन की भट्टी है वो शुरू हो रही है। इसको जाकर के अपने घर गृहस्थ में रहते हुए एक आप यहाँ से पूरे वर्ष के लिए ना एक प्रेरणा लेकर के जाइए, एक ऊर्जा लेकर के जाइए, और एक प्लान आप बनाएं। यहाँ आप सब कुछ छोड़ करके आए हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा नहीं, घर में खाना नहीं बनाना है, बच्चों को नहीं देखना है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अनफेवरेबल कंडीशन भी नहीं है ना। तो यहाँ पर सारा दिन आप योग में बैठ रहे हैं, क्लास ज्ञान योग सब, ऐसा घर में तो नहीं हो सकता। वहां जाते ही आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, ऑफिस भी जाना पड़ेगा, और अपनी सोशल एक्टिविटीज में भी लगना पड़ेगा, सेंटर की भी सेवाएं करनी पड़ेंगी, बहुत सारी जवाबदारियां आ जाएंगी। पर हम अपनी नॉर्मल दिनचर्या में रहते हुए मैक्सिमम कितना पुरुषार्थ के लिए समय निकाल सकते हैं, उसकी एक दिनचर्या, उसकी एक मनचर्या आप लोग बनाइए, क्योंकि वही प्रैक्टिकल है। ये जो आप अभी हैं ये इतना नेचुरल नहीं है, ये 3 दिन का एक कैंप था आपका, लेकिन वो जीवन भर का जो चलने वाला है ना, तो अपनी सोशल एक्टिविटीज में, अपनी फैमिली एक्टिविटीज में रहते हुए हम कितना मैक्सिमम समय निकाल सकते हैं अपने पुरुषार्थ के लिए, उसका एक आप बहुत सुंदर शेड्यूल बनाए और पूरे साल तक पुरुषार्थ का एक प्लान बनाए, तो निश्चित रूप से हमारा ये जो जीवन है, बाबा जैसा हमें देखना चाहता है हम वैसा बन जाएंगे। तो आप सबको एक नई यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जाएंगे अभी भोजन करके, थोड़ा विश्राम करेंगे और आज के विषय पर थोड़ा सा चिंतन भी जरूर करेंगे, लिखेंगे। और आज शाम का सेशन आप सबको याद होगा 4:30 बजे कहाँ जाना है, दादी जानकी जी पार्क में जाएंगे। भाई विद्यार्थी के जीवन में थोड़ा मनोरंजन भी तो होना चाहिए ना, आप लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया, ज्ञान योग किया, तो अब थोड़ा सा हक तो पिकनिक का भी बनता है। तो शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक दादी जानकी जी पार्क में आप लोगों के लिए एक छोटी सी पिकनिक रखी गई है। वहां पर हम अनुभवों की लेन देन भी करेंगे, आपने क्या कुछ सीखा और आप आगे के लिए आप क्या भविष्य योजना बना करके जा रहे हैं अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी एक उन्नति भरे जीवन के लिए। तो थोड़ा सा खेल पाल भी करेंगे, अनुभवों की लेन देन भी करेंगे, योग भी करेंगे, और उसके बाद वापस आकर के ऊपर बड़े हॉल में फिर नौ शाम का योग करेंगे।